हरी 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 हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा बजाओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी हरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा
Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Krishna Balaram Balaram Jaya Krishna Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jaya Sudarshan Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jaya Sudarshan Jagannath Swami Nayan Path Gami Nayan Path Gami Bhava Tume Jagannath Swami Nayan Path Gami Path Gami Bhava Tume Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Jai Om Vishnu Pad Paramhans Paribrajakacharya Stotrasat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramhans Paribrajakacharya Stotrasat His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Savior of the Whole World Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Vartaman Acharya Vrind Ki Jai Guru Parampara Ki Jai Roop Sanatan Bhatt Raghunath Sri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath Sat Goswami Prabhu Ki Jai Anant Koti Vaishnav Vrind Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नितय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नितय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 अध्याय का शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। और आज का जो श्लोक क्रमांक है 7 से लेकर के 9 तक 3 श्लोक की आवृत्ति है। आवृत्ति हम अंतिम वाले श्लोक करेंगे। जिनके पास मोबाइल डिवाइस है 9 नंबर श्लोक निकाल सकते हैं 7:59। मैं 7 श्लोक पढ़ रहा हूँ। 7, 8, 9 की आवृत्ति हम लोग साथ साथ करेंगे। न दद्यात् आमिषं श्राद्धि न च अद्यात् धर्म तत्त्ववित् मुनि अन्ने स्यात् परा प्रीति यथा न पशुहिंसया। अनुवाद। धार्मिक सिद्धांतों से भली भांति अवगत मनुष्य को चाहिए कि वह श्राद्ध कर्म में मांस अंडे या मछली जैसा कोई पदार्थ अर्पित न करें और न ही स्वयं भी ऐसी वस्तु खाएं, चाहे वह क्षत्रिय ही क्यों न हो। जब घी से बना उपयुक्त भोजन संत जनों को दिया जाता है तो यह कृत्य पितरों तथा परमेश्वर को अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर पशुओं का वध किए जाने पर कभी प्रसन्न नहीं होते। श्लोक क्रमांक 8। नैतादृश परो धर्म निनाम सद्धर्मैच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मना वाक् कायजस्य या। जो जन श्रेष्ठ धर्म में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें मंत्रणा दी जाती है कि वे अन्य जीवों से शरीर वाणी या मन संबंधी संपूर्ण ईर्ष्या छोड़ दे। इससे श्रेष्ठकर कोई अन्य धर्म नहीं है। एके कर्म मयान यज्ञान। आवृत्ति कर। ज्ञानिनो यज्ञ आत्मसंयम मने अनीहा जुहुति ज्ञान दीपिते एके कर्म मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्म संयम मने अनीहा जुहवति ज्ञान दीपिते एके कर्म मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्म संयम मने अनीहा जुहवति ज्ञान दीपिते ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्म संयम मने अनीहा जुहवति ज्ञान दीपिते एके कर्म मयान ज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्म संयम मने अनीहा जुहवति ज्ञान दीपिते।
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ और उनका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। एके कोई कोई कुछ कर्म मयान कर्म फल से युक्त यथा पशुबद्ध यज्ञान यज्ञ ज्ञानिनो ज्ञान में अग्रसर जन यज्ञ वित्त तमा यज्ञ के उद्देश्य को भली भांति जानने वाला आत्म संयम मने आत्म संयम द्वारा अनीहा भौतिक इच्छाओं के बिना जुहवति यज्ञ करता है ज्ञान दीपिते पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित आध्यात्मिक ज्ञान के जागृत होने से यज्ञ के विषय में बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिक नियमों के वास्तविक ज्ञाता तथा निष्काम व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान की अथवा परम सत्य विषयक ज्ञान की अग्नि में संयमित बनाते हैं। वे कर्म कांडीय अनुष्ठान विधि को त्याग सकते हैं। तात्पर्य, सामान्यतया व्यक्ति उच्च लोकों में जाने हेतु कर्मकांडी अनुष्ठानों में अधिक रुचि रखते हैं, किंतु जब मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो जाता है तो वे ऊपर उठने के प्रति उदासीन होकर जीवन लक्ष्य ढूंढने हेतु ज्ञान यज्ञ में लग जाते हैं। जीवन का लक्ष्य जन्म तथा मृत्यु के दुखों को प्रकार से रोककर भगवत धाम को प्राप्त होना है। जब मनुष्य इस उद्देश्य हेतु ज्ञान का अनुशीलन करता है तो वह कर्म यज्ञ में लगे हुए लोगों की तुलना में उच्चतर पद पर स्थित समझा जाता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ओम। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः हरे कृष्णा। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से कृपा की याचना करता हूँ जो मुद अधम पतित को जो आज श्रीमद्भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएँ हैं उनको सुनाने का और खुद श्रवण करने का जो अवसर मिला है इसको मैं तभी प्रतिपादित कर सकता हूँ जब आप सब वैष्णवगण मुझ अधम पतित पे कृपा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। तो गत कई महीनों से आप सब भक्तगण इस अध्याय को अध्याय तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है वैसे इस प्रसंग को सुनते आ रहे हैं। ये जो प्रसंग है आज जो चल रहा है ना ये 15वां अध्याय सातवां स्कंद का ये अंतिम अध्याय है अंतिम अध्याय और ये सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 80 श्लोक है इस अध्याय के अंदर में और इसका श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा मैंने इस अध्याय का नाम दिए हैं शीर्षक सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। एक जो मनुष्य सुसंस्कृत मनुष्य है उसके लिए क्या उपदेश होना चाहिए तो ये जो उपदेश है स्वयं भगवान के जो इनकार्नेशन है भगवान के जो अवतार है भगवान वैसे अनंत अवतार लिए हुए हैं उस अनंत अवतारों में से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में आपको 24 मुख्य अवतारों का वर्णन मिलता है तो उसमें से नारद मुनि जो है भगवान के ही अवतार हैं स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार हैं। वो इस जगत में क्यों आए केवल और केवल भक्ति का प्रचार इस जगत में करने के लिए। और ये जो प्रश्न है एक स्वयं जो भागवत है युधिष्ठिर महाराज, जो अनन्य भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, वो अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं ना, अपने आप को सबसे ज्यादा नीचे करके और कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, जो हम सब जीवात्मा जो फंसे हुए हैं यहाँ पर, मैं खास करके आप लोग नहीं, आप लोग तो वृंदावनवासी हैं, मुझ जैसे अधम पतित के लिए वो क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर्स छोड़ के जाते हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं, इंक्वायरी किए हैं युधिष्ठिर महाराज, उन्हीं के प्रश्न का उत्तर लगातार ये नारद मुनि दे रहे हैं इस अध्याय में। और इस अध्याय का शीर्षक श्रीधर स्वामी महाराज बहुत अच्छा बताते हैं, मोक्ष का धर्म, मोक्ष धर्म। ये जो अध्याय है ये मोक्ष धर्म को व्यक्त करता है, खास करके गृहस्थों का कैसे मोक्ष होगा, गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति का मोक्ष कैसे होगा, इसमें एक पर एक श्लोक दिया हुआ है। इस 80 श्लोक में, अभी तो आपने आज 7, 8, 9 श्लोक को श्रवण करेंगे, तो इसको कई भागों में डिवाइड किए हैं। तो इसको पहले श्रवण करते हैं, इस अध्याय में कितने भाग, तो 1 से लेकर 11 तक में जो श्लोक है ना, इसमें मेनली वर्णन है जो वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं ना, वैदिक कर्म कैसे करना चाहिए, उसको, उस प्रोसेस को बताया है 1 से लेकर 11 तक। दूसरा है 12 से लेकर 21 नंबर तक, अधर्म को कैसे हम अवॉइड करेंगे, अधर्म नहीं करना है हमें, इसके बारे में वर्णन किया हुआ है, और कैसे अपने आप को सुधार करें, जो हमें एक सेटिस्फैक्शन सुधार की प्राप्ति होगा। तीसरा है 22 से लेकर के 29 तक में, जो अनर्थ पर, एक जो व्यक्ति, एक साधक अनर्थ पे कैसे विजय प्राप्त करेगा, उसका प्रोसेस कई सारे दिए हुए हैं, और गुरु की क्या विशेषताएं हैं, गुरु की क्या महिमाएं हैं, इनके बारे में वर्णन किया हुआ है। चौथा नंबर पे है 30 से लेकर के जो 40 नंबर श्लोक है, उसमें है गृहस्थ धर्म को मोक्ष कैसे मिलेगा, विशेष रूप से इसका प्रोसेस बता रहे हैं इन 11 श्लोकों में, 30 से लेकर 40 में। उसके बाद 41 से लेकर के 46 तक में रथ का वर्णन किए हैं, जो रथ किस तरीके का होना चाहिए, और 47 से लेकर के 56 तक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो तरह के मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग, इसका बृहद रूप से वर्णन है। और 57 से लेकर के 68 तक में जो श्लोक है, जो व्यवसायिक जो धर्म है उसको कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस है उसको करने के लिए, लगातार यहाँ पर मैं श्लोक दिए हैं, उसका समराइजेशन किया हुआ है। और अंतिम पराम में जो है 69 से लेकर के 80 तक नारद मुनि पूरा का पूरा इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, जो क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़े देर के लिए हम लोग निद्रा देवी को थोड़ा दूर रखते हैं और भागवत का श्रवण करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय, भगवती उत्तम अश्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। अगर भक्ति, नष्ट की भक्ति चाहिए ना, तो निद्रा देवी को खास करके भागवतम में और जप के समय में दूर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। तो इसमें देखिए एक एक चीज का वर्णन यहां पर में किया गया है। 7 नंबर श्लोक में बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, जो कह रहे हैं जो कि श्राद्ध कर्म के बारे में बता रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में 16 तरह के संस्कार दिए गए हैं, 16 संस्कार में से एक श्राद्ध का कर्म किया जाता है, वो भी एक संस्कार है। श्राद्ध कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान मत समझिए। मैंने देखा है अपने गांव के तरफ एक लेडीज थी, जो उसके घर में कोई नहीं बचा हुआ था, वंशज कोई नहीं था, उसने सोचा मैं जब मर जाऊंगी तो कोई करेगा मेरा श्राद्ध कि नहीं, इसलिए क्या किया, उन्होंने जिंदा में ही अपना श्राद्ध कर लिया, समझे ना, जिंदा में ही अपना श्राद्ध कर्म किया, जो जरूरी है एक मनुष्य के लिए, ये एक रिचुअल वर्क है। श्राद्ध को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, और खास करके पितरों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये श्राद्ध कर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, समझ रहे हैं? तो ये श्राद्ध कर्म इसमें बता रहे हैं, जो श्राद्ध कर्म में खास करके व्यक्ति को मांस मछली अंडा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पर मैं श्राद्ध कर्म एक बहुत अच्छा संस्कार है और उसमें बता रहे हैं मांस आदि का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पहले मांस शब्द का डिफिनेशन समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मांस शब्द का डिफिनेशन, माम जिसको आज हम जिस जीव की हत्या करके आज हम उसका मांस को अपने इंद्रिय तृप्ति का भोग करने, इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए आज हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, वही जीव हमें अगला जन्म में मारेगा। मांस का मीनिंग यही बताए हैं प्रभुपाद। इसलिए मांस अंडा मछली ये सब जो चीज है, मांसाहार किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना, मांसाहार किसी भी तरह का नहीं करना, इवेन किसी को नॉनवेज किसी के गलत व्यवहार करना किसी के साथ ना, ये भी एक तरह का मांसाहार ही समझो। क्योंकि एक जीवात्मा के अंदर में एक आत्मा बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, उनके हृदय को अगर हम चोट पहुंचाते हैं ना, तो एक तरह से उनकी भी हिंसा। 8 नंबर श्लोक में यही बात बता रहे हैं, मन कर्म और इस शरीर से किसी से भी ईर्ष्या दोष को त्याग करके ही हम व्यक्ति किसी को प्यार कर सकते हैं। वही व्यक्ति खास करके वृंदावन धाम में रह सकता है जो हर किसी जीवात्मा से प्रेम करता हो। वृंदावन धाम में रहने का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, किसी से बैर नहीं करना, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे सुअर हो, मनुष्य की तो बात ही नहीं है। क्योंकि इस जगत में जो मनुष्य है इस वृंदावन धाम में, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, विशेष राधा रानी की कृपा है तभी तो आज वो वृंदावन धाम में है। नहीं तो लाखों करोड़ों जीवात्माओं से कुछ गिने चुने जीव वृंदावन धाम में है, तो इसलिए वो कम भाग्यशाली नहीं है। इसलिए उनको ध्यान देकर के कहे मांस मद्र। देखिए श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन सोसाइटी का निर्माण किए उसमें पहला जो नियम बनाए हैं ना, इस्कॉन का इतना पूरे ब्रह्मांड में समझ सकते हैं आप, पूरे जगत में इस्कॉन का आज इतना क्यों नाम है। मैं इस्कॉन में हूं, इस्कॉन का डिवोटी हूं, प्रभुपाद के फॉलोअर्स हूं, इसलिए मैं उनका गुणगान कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इस जगत का एक एक जो बड़े बड़े संत हुए हैं ना, इस्कॉन के नाम की जस गाते हैं श्रील प्रभुपाद की वजह से। श्रील प्रभुपाद का नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस्कॉन ही एक ऐसी सोसाइटी है। 4 वैष्णव संप्रदाय है ना, संप्रदाय है, उस सारे संप्रदायों में केवल और केवल इस्कॉन है जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इसको कठोरता से अगर कोई भी पालन करता है ना, तो केवल और केवल प्रभुपाद के जो अनुयायी है ना, इसके अलावा कोई नहीं करता। और इस तपस्या में, इस रिचुअल्स को, इस तपस्या को जो व्यक्ति 4 तरह के जो हमारे प्रिंसिपल है उसको जो व्यक्ति कठोरता से पालन करता है ना, वही व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस करेगा, वही भगवत धाम को जाएगा। इसको पालन किए बगैर अगर कोई चाहेगा मैं भगवान के धाम को चला जाऊंगा, ऐसा कभी भी कदापि नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश में गए ना, तो उनको कई तरह का बोला गया, जो आप इतना बड़ा बड़ा नियम लगा रहे हो, आपके अनुयायी कौन बनेगा? ये जो 4 नियम है, इसी 4 नियम के दायरे में पूरा दुनिया व्याप्त है, और वही 4 नियम वही चीज आप नहीं करने के लिए मना कर रहे हो, तो आपके अनुयायी कौन बनेंगे? कोई नहीं बनेगा। इसलिए आप अपना नियम में कंप्रोमाइज करो, ढील दो, आप भी छुरी काटे से खाओ, सूट बूट पहनो। जैसे कि आज तक इससे पहले श्रील प्रभुपाद से पहले जितने भी भक्त विदेश गए प्रचार करने के लिए ना, सबने अपना हुलिया चेंज कर लिया। पहले के जो सन्यासी होते, पहले के जो लोग होते थे, वो विदेश जाने का एक ज्यादा होर होता था, क्योंकि उसको क्या बोलते फॉरेन रिटर्न का एक जो है ना पद चाहिए। मैं फॉरेन रिटर्न हूं, फॉरेन से वापस आया हूं, मतलब एक पद तरह के लिए भी जाते थे लोग विदेश, और भले ही विदेश में वो एक लोगों को प्रचार नहीं किया, खुद प्रचार होकर के आगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फॉरेन रिटर्न का एक पद भी लग जाता था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किए, तभी तो आज इतना प्रभुपाद का न भूतो न भविष्यति ऐसा आचार्य आपको न कभी मिला और न कभी मिलेगा, खास करके अगले 10,000 वर्षों तक ऐसे तो नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए इस जीवन का जो मेन उद्देश्य है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हमें डिफीट करके इसी जन्म में हमें भगवत धाम जाना है, ऐसा हमें प्रोसेस करना है। इसमें कह रहे मांस मछली मद्र, देखिए चार नियम बताए हैं, एक बार हम बता देते हैं क्योंकि बहुत नए भक्त सबको जानकारी है। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और प्रत्येक दिन कम से कम माला पे, जप माला है ना, इस पे 16 कम से कम 16 माला का नित्य जाप करना। वैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 24 आवर जो है ना भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए नित्य निरंतर। 16 राउंड्स उन्होंने कम से कम बताया, एटलीस्ट, कहीं भी मैक्सिमम नहीं बोले हैं। इसलिए हमारी पतित स्थिति को देख करके श्रील प्रभुपाद जी ने अपने 64 माला को कम करके हम लोगों के लिए 16 माला का नियम बनाए। तो इसको कम से कम बड़ी ही कठोरता से, बड़े ही ध्यान से कर ले। तो पहला चीज बता रहे मांस आदि जो है ना श्राद्ध कर्म में नहीं उपयोग किया जाता है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जब हमें घी से बना हुआ चीज प्रोडक्ट मिल रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयक्षति, भगवान को क्या चाहिए, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं हमें क्या चाहिए। अगर भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, तो उनको जो चाहिए वो हम देंगे ना, या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो हमें चाहिए वो देंगे। हम लोग भगवान को ये भोग लगाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान शास्त्र में दिए हैं, और उस हिसाब से, उस कॉन्शियसनेस से जब हम भगवान को भोग ऑफर करेंगे, वो जब उचित प्रसाद पाएंगे, तो हमारी चेतना बहुत ही शुद्ध होगी। इसलिए कह रहे हैं जो ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो ये दांत है ना, इसमें प्रभुपाद ने बताया मनुष्य को मांसाहार नहीं करना। देखिए मनुष्य के दांत नुकीले होते हैं क्या, मनुष्य के दांत चपटे होते हैं, और चपटे दांतों से कभी भी मांस के टुकड़ा को नहीं चबाया जा सकता। साइंस कहती है, विज्ञान कहती है, एक मांस का टुकड़ा जब उदर में जाता है ना, 15 दिन तक नहीं पचाने की शक्ति है इस आंत को। ये जो इंटेस्टाइन है हमारी, जो जठराग्नि है ना, 15 दिन तक नहीं पचा सकती। अब हम उस मांस के टुकड़ा, जिस मांस के टुकड़ा को चबा नहीं सकते, आप देखे हैं मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर कुत्ते, देखे कितने नुकीले दांत होते हैं, तुरंत काट देंगे एक किसी को भी, लेकिन मनुष्य का दांत ऐसा नहीं होता है। लेकिन मनुष्य इंद्र तृप्ति की, अपने इंद्रियों को क्षुधा निवृत्ति के लिए ना, वो व्यक्ति क्या नहीं, मांस का क्या, उसको जो भी मिल जाता है ना वो भी खा लेते हैं। चाइना में तो सांप, क्या क्या चीज, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो व्यक्ति उस काली के नाम पे जो है ना, बड़ा बड़ा बकरा अच्छा अच्छा तैयार करके काली को भोग लगाता है, समझे ना। वो केवल और केवल अपना इंद्र तृप्ति, वो इसलिए वेद बता रहा है, जो हमें वेद के आर में भी लोग मांसाहार कर रहे हैं, और वेद इसलिए कह रहा है जो आप किसी भी तरीके से मांसाहार छोड़ो। एक जीव की हत्या जैसे ही व्यक्ति करता है ना, तो सत्यम शौचम तपस्या और दया, ये जो चार चीज है ना, जिस पिलर पे पूरा का पूरा जगत टिका हुआ है ना, उसमें से किसी जीव की जब कोई व्यक्ति हत्या करता है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर से दया नाम का चीज खत्म हो जाता है। इस चार नियम में चार चीज की स्थापना है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये चार नियम स्थापित किए, और एक भक्त के हृदय में ये चार चीजों को भरे हैं, तभी तो आज किसी जीव से प्रेम करेगा, तभी तो भगवान से जो हमारा करोड़ों जन्मों से संबंध छूटा हुआ है उसमें, तभी तो हम स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो कैसे स्थापित होगा। तो यहां पर मैं उसी की स्थापना के लिए बता रहे हैं, जो पिलर है उसको हमें ग्रहण करना है। सबसे बड़ी बात है जो श्रील प्रभुपाद जी इसको अपने इस संस्था में लाकर के मांस आदि, देखिए कितना अच्छा कर्म बता रहे हैं, जो ये यज्ञ आदि जो अनुष्ठान है, इसमें व्यक्ति को क्या चाहिए, हमें इन सब चीजों को अवॉइड करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। ये सामान्यतया इस व्यक्ति इस्कॉन के अंदर में ये हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात यहां पर में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर में, मुनि अन्नम तहिज गे सार्वभौम। प्रभु जी बहुत अच्छी बात बताए, मुनि अन्नम की डिफिनेशन आप पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा है। मुनि अन्नम का क्या मतलब होता है? मुनि अन्नम का मतलब होता है जो ऐसा भोज्य पदार्थ जो खास करके जंगल से लिया गया हो, फॉरेस्ट से लाया गया हो, यानी कि फल फूल वगैरह जो लाया गया हो, या ऐसा अन्न पदार्थ जो किसी भी गलत तरीके से उपार्जन करके नहीं लाया हो, प्रॉपर मीन्स ऐसा गेन्स जो कह रहे हैं फॉरेस्ट फूड और फूड गेन्स बाय प्रॉपर मीन्स। और सबसे पहला बात होना चाहिए वो फूड जो होना चाहिए भगवान को, सबसे पहले विष्णु को ऑफर होना चाहिए, तभी वो मुनि अन्नम होगा। श्रील प्रभुपाद जी मुनि अन्नम को ही ग्रहण करते हैं और मुनि अन्नम को ही सभी को खिला करके, सारे विदेशी भक्तों को खिला करके सबका हृदय परिवर्तन कर दिए और चारों नियम को मानने के लिए मजबूर कर दिए। जब प्रसाद खाए तो इसका प्रभाव पड़ा एक शुद्ध भक्त का, तो इसलिए इसको करने के लिए बता रहे हैं मुनि अन्नम हमें करे। मुनि अन्नम कौन है? जो घी से बना चाहिए, दही से बनना चाहिए, यह नहीं कि वेद पुराण बोल रहे हैं जो अमावस्या को बलि प्रदान बंद करो तो दो उसके बाद बंद करो, इसको लोग प्रोफेशन बना करके उन्हीं के पीछे अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव इस बात को बता रहे हैं, एक बहुत ही छोटी सी कथा बताते अच्छा सा, जो व्यक्ति अपने जीव के लिए, जीव की पूर्ति के लिए जो है ना भगवान को भी बलि देता है, देवी देवता को भी बलि देता है। तो कह रहे हैं क्या, एक ब्राह्मण था जो अक्सर जो है ना बकरे का बलि दिया करता था, हर अमावस्या को बकरे की बलि। तो प्रसिद्ध हो गया था भाई खूब बकरी। तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो बकरे की बलि देना बंद कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने उसे पूछा, महात्मा जी अब ब्राह्मण जी अब क्यों बकरे की बलि देना बंद कर दिए? तो कह रहा है क्या व्यक्ति, वो ब्राह्मण, अब दांत नहीं रहे। मतलब अब जो बकरे की बलि जो दे रहा था वो काली को नहीं दे रहा था, अपने दांत को लिए दे रहा था, समझ रहे ना? तो ये टेंडेंसी है हमारा, क्योंकि हम अपने खाने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं। तो यहां पर मैं जो घी से बना हुआ पदार्थ है, जो घी है, जो पत्र है, पुष्प है, फल है, अन्न है, दूध से कई तरह के वैरायटीज बनते हैं, उसको भगवान को भोग लगाकर एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन उसको हमें प्रयोग करना है। अगर हमने श्राद्ध कर्म में ऐसा चीज प्रयोग कर लिया ना, तो डायरेक्ट वो पितर भी नरक में जाएगा और उसका वंश भी नरक में जाएगा, ये विधान है। तो कह रहे हैं यहां पर मैं, देखिए लोग व्यक्ति क्या करता है, स्वर्ग जाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जो है विधान करता है, कर्मकांड में विधान है ना, कर्मकांडी जो व्यक्ति होते हैं वेद के अनुसार कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करता है। लेकिन स्वर्ग जाना किसके लिए है? जिसको अभी नॉलेज नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं कर्म कांड करते हैं उससे ज्यादा ज्ञान कांड है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो उनकी भी ज्ञान अभी क्या बोलते हैं उसको, अपरिपक्व है। लेकिन यहां पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में जागृत हो जाता है ना, तो व्यक्ति इन सब चीजों में रुचि नहीं लेता, इन सब चीजों से हट करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए, कैसे भगवान की प्राप्ति किया जाए इसके फिराक में लगा रहता है। तो आध्यात्मिक शास्त्र क्या कहती है, जो एक व्यक्ति जब आध्यात्मिक में उन्नत हो जाता है ना, तो बिना भगवान को भोग लगाए वो कुछ ग्रहण नहीं करेगा। भगवत गीता के अंदर में तीसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यंते सर्व किल्बसे भुंजते तेतु अभं पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ में जब तक सेक्रीफाइस, जब तक
भगवान को अन्न अर्पण नहीं किया जाएगा ना, वो अन्न अगर हम खाते हैं ना बिना अर्पण किया हुआ, तो डायरेक्ट जो है ना हम चोर हैं, डकैत हैं। इसलिए भगवान को ऑफर करके ही कुछ हमें ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हुए व्यक्ति किसको बोलते हैं? शुद्ध ज्ञान आखिर है क्या, इसको समझना पड़ेगा ना। तो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा स्वयं भगवान शिव जो है ना नारद जी को उपदेश देते हैं नारद पंचरात्र में, वैष्णवानां मतं सस्तं सर्वेम्योऽपि च नारद, न वैष्णवात् परो ज्ञानी ब्रह्मांडेषु च ब्रह्मणः। अरे इस जगत में सबसे जो उत्कृष्ट व्यक्ति है ना वो है विष्णु के जन, वैष्णव का मत, वैष्णव का जो मत होता है वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, ये नारद मुनि शिव जी बता रहे हैं। और इस ब्रह्मा, ब्रह्मा के जो इस ब्रह्मांड में जो निर्माण किया गया है, तो कह रहे ब्रह्मा के इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा के द्वारा जो ये ब्रह्मांड की जो रचना की गई है, उस ब्रह्मांड के अंदर में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो वैष्णवों से उत्कृष्ट हो। तो वैष्णव का जो ज्ञान होता है ना, उनका ज्ञान सर्वोपरि होता है, उनके ज्ञान को फॉलो करने के लिए लाखों लोग अनुयायी बन जाते हैं। और इसी बात की स्थापना करने के लिए स्वयं व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को एक प्रवचन देते हैं जो शुद्ध ज्ञान क्या है। ज्ञान दाता यो ज्ञानम तत्कृष्ण भक्तिदम सा भक्ति परमा शुद्धा कृष्ण दास्य प्रदा च व। देखिए ज्ञान देने वाले इस जगत में बहुत हैं, खास करके सर्वप्रथम माता पिता ज्ञान के दाता होते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले वहीं से सीखता है। तो कह रहे हैं पिता, पिता वह है जो ज्ञान देता है, लेकिन कह रहे हैं अगली परिभाषा, ज्ञान वह है जो कृष्ण भक्ति देता है। ऐसा ज्ञान हमें मिले जो ज्ञान से हम कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दे। अब उससे भी कह रहे हैं भक्ति वह है जो श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा प्रदान करने वाली हो। भक्ति भी हम उसको बोलते हैं जो श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा में हमें अपने आप को नियोजित कर दे, ऐसा लगा दे, प्रेमा भक्ति के अग्रसर हो जाए, ये शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े हुए चढ़े हुए व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है, केवल और केवल भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ज्यादा प्रयत्न करें। और ये बुद्धि ज्ञान कहाँ से आता है, किसको आता है? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति ते। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवान बोल रहे हैं, जो जो लगातार भगवान की निरंतर इस आध्यात्मिक ज्ञान को एडॉप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमेशा अपने आप को लगाए रहता है ना, उस व्यक्ति में क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान बुद्धि योग आते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, तब ये आध्यात्मिक ज्ञान आता है। और वो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से इस भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित कर लेता है। और शुद्ध ज्ञान व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है ना, ये नहीं कि इधर भी सुन लिया, इधर भी सुन लिया, इधर भी सुन लिया, ऐसे जगह से आपको कचरा ज्ञान की प्राप्ति होगा। कौन व्यक्ति कैसा है जिसे हम श्रवण कर रहे हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम, करें जो अवैष्णव के मुख से हमें कभी कुछ सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हृदय जो अच्छा है ना उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा एकदम, भक्ति भी हमें खत्म कर देगा। इसलिए हमें परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु। ये एवं परंपरा प्राप्तम, श्रवण कीर्तन हमें परंपरा के आचार्यों से, जो वैष्णव आचार्य है सो खुद आचरण करके दिखा रहे हैं, जो भगवत धाम जाने के भगवान के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसे वैष्णवों के परंपरा से हमें शुद्ध ज्ञान अर्जित करना चाहिए। भगवत गीता के अंदर में है भगवान 13वें अध्याय में 8 नंबर श्लोक से लेकर के 12 नंबर श्लोक तक लगातार ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं। ज्ञान क्या है, एक्चुअल ज्ञान क्या है, क्या है अमानित्वम अदम्भित्वम से लगातार लेकर के श्लोक है, उसमें करीब करीब 26 जो है ना ज्ञान के चीज बता रहे हैं। 13वां अध्याय का 8 से लेकर 12 नंबर श्लोक पढ़ के देखिएगा, उसमें 26-27 करीब ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं। उस ज्ञान के लक्षण में सबसे जो परफेक्ट ज्ञान है ना, उसमें कह रहे हैं आदो गुरु शुश्रूषया, जो गुरु के शरण में जाकर के उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान लेना चाहिए, और अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान की भक्ति जो है ना सर्वो। एक जीव का पर धर्म क्या होता है, 8 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, किसी से भी ईर्ष्या दोष नहीं करना, लेकिन जीव का पर धर्म क्या होता है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, भागवतम 1.2.6। ये बता रहे हैं यहाँ पे जो क्या एक जीव का पर धर्म क्या हुआ है, केवल और केवल अधोक्षज भगवान के श्री चरणों में, जो भगवान इंद्रियों के द्वारा पकड़े नहीं जा सकते, ऐसे भगवान को पकड़ना है। माता यशोदा ने भक्ति करके ऐसे भगवान को पकड़े ना, बांध दिए ना, भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है ना, तो ऐसे अधोक्षज भगवान जो इंद्रियों के द्वारा पकड़े नहीं जाते, तो उस व्यक्ति को जो है क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए अधोक्षज भगवान अपनी भक्ति को तीव्रेण भक्ति योगे ना, तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान की, भगवान को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति में जो सबसे पर धर्म है भक्ति परफॉर्म करने के लिए करें अन्याभिलाषिता शून्यम, करें नहीं यहां पर मैं इच्छा विहीन, डिजायर लेस होकर के व्यक्ति जो रहेगा ना, क्योंकि ये जो डिजायर है ना, इच्छा ही हमें जन्म मृत्यु में आज तक हमें फंसा के रखा है इस जगत में। हम सब जो बार बार जन्म ले रहे हैं, करोड़ों जन्म हो चुका है, इसका मूल कारण है हमारे पूर्व के कर्माज और इच्छा। आप 15वें अध्याय में है ना, हाँ वो जो उर्द मूलो साधा साहब उसी में बता रहे हैं भगवत गीता के, जो ये इच्छा है ना स्ट्रॉन्ग डिजायर, वही हमें बांध के रखा है इस धरती पे। जिस दिन हम स्ट्रॉन्ग डिजायर को खत्म कर देंगे ना, भगवान के प्राप्त के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोचेंगे ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता शुद्ध तरीके से अपराध रहित होकर के जब तक भगवान के नामों का जप नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं होगा। हमारा मेन उद्देश्य देखिए, हमारी भक्ति जो है ना, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बता रहे हैं 99.99% जो भक्ति है ना, वो हमारे जप पे डिपेंड करता है। हम जप कैसे कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का सबसे मेन भक्ति है। और जप को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है किसी के प्रति अपराध नहीं करना, खास करके वैष्णवों के प्रति। तो हमारे अंदर में जो अनर्थ है ना, उसको हमें खत्म करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बहुत जोर दिए हैं, मनुष्य को, एक साधक को कम से कम इस लाइफ में भक्ति के जो नवधा भक्ति के जो 9 स्टेज है ना, वैसे 64 अंगों में से 9 इंपोर्टेंट है, और श्रद्धा से लेकर के कहां तक, प्रेम तक, उस श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के बीच में जो 5वां पड़ाव है जो निष्ठा, ये निष्ठा के स्तर तक कम से कम एक साधक को जरूर इस जिंदगी में आ जाना चाहिए। क्योंकि निष्ठा के लेवल पे जब तक व्यक्ति नहीं, साधक आएगा ना, उसका तो फिर भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जप को सुधारना, और जप को सुधारने के लिए निष्ठा के लेवल पे आना है। तो भागवतम में स्वयं सुखदेव गोस्वामी श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक का स्तर बताए हैं, और वो भागवतम के 1.2 पहला स्कंद के दूसरा अध्याय का 16 नंबर श्लोक से लेकर के 21 नंबर श्लोक तक आपको श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक की पूरा का पूरा वर्णन किए हैं। श्रील प्रभुपाद का सबसे फेवरेट चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का सेकंड अध्याय, समझ रहे ना, उसका एक भी श्लोक प्रभुपाद नहीं छोड़े हुए जो हजारों हजारों बार बोले हैं अपने प्रवचन के अंदर में। तो वो 16 से लेकर के 21 तक वो हमारी भक्ति की नींव है। तो कह रहे हैं यहां पर में प्रभुपाद का विशेष जोर है हम सब साधक को कम से कम निष्ठा के लेवल पे आने के लिए। श्रील प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं निष्ठा पे आने, तो हम एक व्यक्ति कौन निष्ठा के लेवल पे है इसको आंकने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहे हैं यहां पर में। इसको हम 12 से 15 मिनट लगेगा, तो धैर्य के साथ सुनिए, प्रसाद का चिंतन मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भक्ति का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो श्रील हिजोलिनेस सचिनंदन स्वामी महाराज द लिविंग नेम में बुक में लिखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्दों का जो मंत्र है ना, इसमें शुरू के हरे को पकड़ना है, ध्यान से सुनिए, शुरू के हरे को पकड़ना है और लास्ट के हरे को पकड़ना है, बीच पे उतना फोकस मत करिए, शुरू के हरे और लास्ट के हरे को ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करिए। अगर आपको कह रहे हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के इस सागर में अगर आपको गोते लगाना है ना, तो इस दो अक्षर को हरे, शुरू के हरे लास्ट के हरे को ध्यान से सुनना है। आप अगर इसको सुनने का ध्यान लगा लिए ना बढ़िया से, तो हम बढ़िया से जो है ना तैर सकते हैं, पूरा आनंद के रस में जो है ना हम ले सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। इसलिए हरे, शुरू के हरे आप सुनने ध्यान से श्रवण करने का दीजिए। ये जो भगवान के नाम का जो चैंटिंग है, जप है ना, वो है, वैसे सारे प्रोसेस इसमें होता है लेकिन मुख्यतया श्रवण कीर्तन और स्मरण मेन इंपॉर्टेंट है इस चैंटिंग के अंदर में, जप में। और जप हमारा अच्छा हो गया तो सबसे अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमें एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। तो कह रहे हैं जब तक व्यक्ति इस निष्ठा के लेवल पे नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति निष्ठा के लेवल पे आ जाता है ना, तो उसके अंदर से 75% अनर्थ जो है ना गायब हो जाते हैं। और कह रहे हैं जो व्यक्ति 75% अनर्थ अपने आप से निकाल लेता है ना, तो बचा 25%, तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है ना, उसके बाद स्वरूप शक्ति अपने आप अपने तरफ चुंबक की तरह खींच लेती है, उसके लिए फिर प्रयास नहीं करना है, हमें इस अनर्थ को अपने से गायब करना है। तो भक्ति के ये जो निष्ठा का जो लेवल है उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत ही अच्छा वर्णन कर रहे हैं अपने माधुर्य कादंबनी में, निष्ठा के 5 इसको क्रम बताए हैं। पहला जो क्रम है उसको बोलते हैं लय, आप लोग नोट कर सकते हो, लय। लय क्या चीज है? लय ऐसा चीज है जब व्यक्ति जब एक साधक जप करने के लिए बैठता है ना, तो लय के समय में श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, लेकिन उस श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान के नाम को जप कर रहा है, नियम ये होना चाहिए उत्तरोत्तर उसको श्रवण में अच्छा ध्यान लगना चाहिए, कीर्तन में उसे और ज्यादा ध्यान लगना चाहिए, और स्मरण यानी कि मन में चिंतन चलना चाहिए भगवान के जो दिव्य जो श्रृंगार है कैसा है, या उनकी लीला चिंतन हो रहा है ये मन में चलते रहना चाहिए, ये उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए। लेकिन जप के समय में हमारा मन सबसे ज्यादा इधर उधर विक्षेपित होता है और हम उसको मन को लगा नहीं पाते हैं। क्यों? ये सबसे मेन कारण है, ये तमोगुण के कारण हमारे अंदर में, हम जप के समय में भागवत श्रवण के समय में हम जो है ठीक से उस एक एक शब्द को श्रवण नहीं कर पाते। तो कह रहे ये जो निद्रा देवी जो आती है जप के अंदर में, ये निष्ठा के लेवल पे लय जो है, ये लय के अंदर में है सारे का सारा, ये निद्रा आता है। दूसरा जो स्टेप है विक्षेप। विक्षेप में क्या होता है, विक्षेप वाला जो स्टेज होता है उसमें बड़ी व्याकुलता होती है। जप के समय में जो व्यक्ति गप सप करता है, उसका जप भी चल रहा है, और गप सब भी चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ हाँ ठीक है, ये फलाना व्यक्ति ये है जो इतना काम हो जाना चाहिए आज 12 बजे तक, आज ये पेमेंट आ जाना चाहिए, सारे के सारे दुनिया भर के काम फोन पे होता रहता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे। अब हरे कृष्ण मंत्र सीढ़ी पे बैठ के जप कर रहा है, बगल वाले से अपने पड़ोसी से बात भी कर रहा है। तो इसको इसको सबसे बड़ा विक्षेप बोलते हैं और कह रहे हैं जप में अनमनस्क होना, ये जो विक्षेप है व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, न कि उसकी प्रायिकता है उसको। तो ये किसके कारण होता है दूसरा स्टेज, ये सबसे बड़ा है रजोगुण के कारण। ये जो व्यक्ति एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहता है ना, ये रजोगुण के कारण होता है। और तीसरा होता है क्या, अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति जो होता है ओ प्रतिपत्ति, वो कह रहे लाइव विक्षेप, लाइव विक्षेप दोनों नहीं है, लाइव भी नहीं है एक साधक में, वो सोता भी नहीं है, जप भी बढ़िया से करता है, और कह रहा है वो किसी से बात भी नहीं करता है, लेकिन तीसरा जो है उसको पकड़ लेता है अप्रतिपत्ति। लाइव विक्षेप में क्या होता है, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय में मन ही नहीं लगता, केवल और केवल वो जप करता रहता है अपना गिनती पूरा करने के, 16 माला हुआ, 16 माला हुआ, 8 बज गया, 16 माला हुआ, प्रसाद का टाइम होने वाला है, ये होने वाला है, ऑफिस जाना है, यही चिंता में लगा रहता है, माने कि उसका पूरा का पूरा मन आध्यात्मिक विचार से जो है ना एकदम पूरा का पूरा मन अलग रहता है। तो इसको बोलते हैं ये तमोगुण के कारण ही फिर से होता है। और चौथा जो स्टेज है इसको बोलते हैं कसाई, कसाई वो मारने वाला कसाई नहीं, ये कसाई। कसाई में क्या होता है, ये देखिए ये तीन स्टेप से व्यक्ति जब आगे बढ़ गया तो कह रहे हैं चौथा स्टेप, कोई व्यक्ति सोता भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करता है, उसको इधर उधर मन भी भटकता नहीं, भगवान में उनका ध्यान भी लग रहा है, लेकिन चौथा स्टेज में कह रहा है क्या, उसके पूर्व के जो आदत है ना, पूर्व के जो कर्म है, संस्कार है ना, वो उसको बार बार कोंध रहा है। अब उस बार बार आदत से, कई आप सन्यासी को भी देखे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, जो बात बात में क्रोधित होता है, देखे होंगे ना आप लोग, एक्सपीरियंस होगा आप सब भक्तों को, बात बात में क्रोधित होना, बात बात में व्यंग, क्या क्या चीजें बहुत बहुत रखे, ये जो क्रोध होना और बात बात में किसी चीज को देख करके लोभ हो जाना, किसी के यहां जाना प्रचार करने के लिए और गृहस्थ का आलीशान बंगला देख करके ही लालायित हो जाना, हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ये जब किसके लिए होता है, ये कसाई के कारण, ये पूरा पुरानी जो हमारी संस्कार है ना, भोग करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसी के कारण बार बार हमें भक्ति में ये सबसे बड़ा बाधक है कसाई। और पांचवा जो है वो है रसास्वाद। रसास्वाद में कह रहा है ये रजोगुण के कारण होता है। ये व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति में लाइव विक्षेप और प्रतिपत्ति और कसाई ये नहीं है, चारों चीजों में से कुछ भी नहीं है साधक, लेकिन ये पांचवा चीज में क्या होता है, व्यक्ति भौतिक भोग, इतना चीजों को त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गया, सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी लेवल पे है, लेकिन वो अंतर मन से ना जैसे ही विषय भोग को भोगने की, जैसे ही विषय भोग सामने आ गया, माने विषय भोग करने का उसको अवसर मिल गया, तो व्यक्ति तुरंत जो है उसमें तत्पर हो जाता है। तो वो उसको देखिए आप, विश्वामित्र का जो प्रसंग है, वो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक लगातार भगवान की आराधना कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक स्त्री को देखा, स्त्री के स्वरूप को देख करके जैसे ही विषय उसको मिला, तुरंत उसमें आकर्षित हो गया। लेकिन जो उत्तम कोटि के साधक होते हैं ना, जिसका नाम जाप में निष्ठा होता है ना, जो निष्ठा के लेवल का जो व्यक्ति होता है ना, इन पांच चीजों का एब्सेंस होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, जिनमें ये पांच चीजें हैं उनको समझ लो निष्ठा के लेवल पे नहीं है, ये पहचान है। तो इसलिए व्यक्ति को कह रहे हैं तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ करके है ना, करें नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम अश्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। अगर आपको नैष्ठिकी भक्ति चाहिए भगवान के प्रति ना, जो किसी तरह का लाइव विक्षेप ये सब चीज ना हो, तो क्या होगा, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयस्ये चेत एतैर्ना विद्धम स्थितम सत्ये प्रसीदति। इस तरह की जब चेतना ठीक से जप हम करेंगे तो जप के प्रभाव से क्या होगा, स्थितम सत्य प्रसिद्धति, एक साधक शुद्ध सत्व गुण, हमें तमोगुण रजोगुण और क्या बोलते हैं सत्वगुण, इस तीन से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्वगुण में प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो ये व्यक्ति यही बोल रहा है इस श्लोक में 19 नंबर में, 18-19 है ना, 1.2.1, तथा रजस्तम, ये काम क्रोध लोभ, ये सारा का सारा तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के चक्कर में ये सब सारा हो रहा है। इन सब चीजों से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति में अपने आप को नियोजित करना है और हमेशा नित्य निरंतर यही प्रयास करना चाहिए जो हमारा जप कितना अच्छा हो। हमारा आज का जप डिपेंड करता है हमारे कल के एक्टिविटीज से, इस बात को आप ध्यान रखिए, हम कल क्या क्या किए हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आज के जप को प्रभावित करता है। इसलिए कल आज हम क्या कर रहे हैं इस एक एक चीज पे ध्यान रखना है ताकि हमारा कल का जप नहीं पूरा हो, जप खराब ना हो, क्योंकि ये 16 माला का जो जप है ना, जो गुरुदेव का आदेश है, इसमें इफ एंड बट नहीं करें। अगर आपको ज्यादा माला कर रहे हो, 64 माला कर रहे हो, 108 माला कर रहे हो, ज्यादा संख्या कर रहे की ठीक है, कर रहे हो बहुत अच्छा है, करते रहिए, करते रहना भी चाहिए, 16 माला पे रुकना नहीं चाहिए, जितना जिनके पास अवसर है, लेकिन जप की क्वालिटीज को बढ़ाना है। हमें दिन के एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, किसी से बकझक जैसे हो जाता है ना, आपको प्रभाव डाल देगा। इसलिए 16 माला के जप में आज से प्रतिज्ञा करें जो हमें किसी से बात नहीं करना है। 16 माला जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम किसी से बीच में बात ना करें। 17वां माला से थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। 16 माला गुरुदेव का आदेश है, समझ रहे हैं ना, 16 माला गुरुदेव का आदेश है, इसलिए हमें इसमें नहीं करना है। इसलिए 99.99% जो भक्ति है ना, किसी के मन में प्रश्न उठता होगा, जब जप ही 99.99 भक्ति है तो ये सुबह 3 बजे 2 बजे से जग करके रात को 10 बजे तक हम क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, डे प्रोग्राम, सेवा, ये सब क्या है? तो ये सब कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, फालतू चीज नहीं है, ये सारे चीज, ये जो सुबह से लेकर के रात तक की जो आपकी एक्टिविटी है ना, ये केवल और केवल हमारी जप सुधारने के लिए। अगर हम इसको सेवा को ठीक तरीके से करेंगे ना, फिजिकल एक्टिविटीज है, सेवा जप करना भी है। कोई बोलता है ना, कई बार बहाना बनाता है, कोई ठीक डिवोटी को सेवा लगा दो ना, मैं प्रभु जी मेरा जप नहीं हुआ है अभी, मतलब बोले बोलेगा ही नहीं, भाई जप करना बाकी है तो जप पहले प्रायोरिटी है, तो वो सेवा से बचने के लिए ऐसा कर रहा है जो मेरी अभी जप नहीं हुआ है। तो करे सेवा को सेवा भाव से करना है, ये नहीं कि ड्यूटी पूरा करना है, समझ रहे हैं, सेवा को सेवा का भाव होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से इस मनुष्य जिंदगी में आ गए हैं, दुर्लभम मानुषम जन्मम तद अपि अध्रुवम अर्थदम, हमारे आचार्य यही बोलते हैं, इस दुर्लभ मानुष जन्म को साकार करके इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर से जन्म मृत्यु में न फंसे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आज के इस 3 श्लोक से हम यही शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं। मेरे मुख से बहुत ऐसी कर्कश वाणियाँ निकली है और वेद शास्त्र पुराण के सम्मत तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न हो तो पर्सनल पूछ लीजिएगा, हमारे पास समय नहीं है अभी।